माफी चाहती हूँ, मैं अभी आप लोगों को ये रिपोर्ट नहीं दे सकती। अच्छा, तो बात ये है कि पेशेंट की इजाजत के बगैर जो रिपोर्ट में दर्ज है, हम वो किसी को नहीं बता सकते। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ।
शुक्रिया।
दुआ करती हूँ खुदा आपको सब्र दे। बाहर अल आपको हर सूरत ये इत्मीनान करना होगा कि माशीद प्रेग्नेंट बिल्कुल नहीं थी।
फिर आपसे क्यों रابطہ कर रही थी?
हमारे पास सुबह से शाम तक कई मरीज आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से हम मरीज के बारे में याद नहीं रख सकते। लेकिन माशीद, मुझे अच्छी तरह याद है कि माशीद की इस रिपोर्ट में मैंने क्या लिखा है। एक मिनट। माशीद उस वक्त बहुत शदीद दर्द में मुब्तला थी। अलबत्ता जब मैंने उसका चेकअप किया तो उसको जनाना मसला था।
जनाना मसला? क्यों?
जी हाँ, बहुत सी बातें हैं। बहरहाल हमने चेकअप करके पहले ही मरहले में उसका इलाज शुरू कर दिया था, क्योंकि आगे चलकर मरीज के लिए इस मर्ज में काफ़ी मुश्किलात होती हैं। अगर इसकी ट्रीटमेंट जल्द शुरू ना हो तो जान का खतरा हो सकता है, इसीलिए उन्हें मैंने एक टेस्ट लिख कर दिया था।
किस चीज़ का टेस्ट?
एक रूटीन टेस्ट था। उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी कम था और उनके जिस्म में खून की कमी की वजह से मैं काफ़ी परेशान हुई थी।
तो बस यही?
नहीं, अल्ट्रासाउंड भी किया था, लेकिन उस अल्ट्रासाउंड में कोई घबराने वाली बात नहीं थी। एक ब्लड टेस्ट करवाया था और एंटीबायोटिक भी लिखी थी। फिर उनसे कहा था कि बाद में आपको एक टेस्ट और करवाना।
माफी चाहती हूँ डॉक्टर, अगर मुमकिन हो तो इस मुलाकात के बाद एक मुलाकात और।
देखिए मोहतरमा, दरअसल माशीद ऐसी हालत में थी कि उसका प्रेग्नेंट होना मुमकिन था, लेकिन कोई चीज नामुमकिन नहीं।
यहाँ आइए, आपका नाम लिख लिया है। कुछ बातें रह गई हैं, बाद में जब फोन करूंगी आपको बता दूंगी। ठीक है, आप जाइए, कोई बात नहीं।
बात सुनो गुलामी साहिबा।
सलाम दानिश्वर साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
सलाम इंजीनियर साहब। अभी बताती हूँ, आप आए हैं।
गुलामी साहिबा, जरा ये बताइएगा कि नूर्स गया? अरे अस्सलाम वालेकुम मिस्टर दानिश्वर, आज कैसे रास्ता भूल गया? ये बताइए कैसी तबीयत है आपकी? खुशी हुई आने की? आओ।
चाहता हूँ ये जान सकूं ये जहर से ज्यादा तलख बातें कहां से आई हैं। यानी वो जो कुछ कहेंगे वो हम कबूल करेंगे?
आपका मतलब किन बातों से है?
वाकई ये कानूनी मेडिकल रिपोर्ट किस तरह की लिखी है? तुम तो वहां मौजूद थे खलत, कहा नहीं कि ये इल्जाम हम पर मत लगाएं। तुमने ये क्यों नहीं कहा कि किसी और डॉक्टर से भी मेडिकल करवाएं? तुम तो इतने सालों से हमारे घर के फर्द हो, हम सबके साथ हो। तुम सोच सकते हो ये लानती इल्जाम हमारी मस्जिद पर लग जाए? खुदा की कसम, इसको सुन के मुझे शर्म आती है। उस वक्त तुमने कहा कि रिपोर्ट को बदल दिया जाए। अगर ये बच्चा नापाक था तो हमें जानना चाहिए ताकि हम कुछ कर सकें, और वो पाक हो जाता। अगर ये बच्चा पाक था तो क्यों उसके नाम के ऊपर ये दाग लगाए?
मुझे खुद भी धचका लगा था।
धचका लगना भी चाहिए था। दो घंटे सबसे बहस की है कि अगर खलत ने किया है तो ठीक ही किया होगा, मगर जिस वक्त डॉक्टर की बात अम्मी के मुंह से सुनी तो लगा ठंडे पानी की बाल्टी मुंह पर डाल दी है, ठंडा हो गया। डॉक्टर कह रही है कि मैशीद के प्रेग्नेंट होने की खबर बेबुनियाद है।
कौन सा डॉक्टर? कानूनी मेडिकल?
नहीं, उसका खुद का डॉक्टर, वही जिसके पास मरने से 3 हफ्ते पहले तक वो जाती रही है।
आखिर उन्होंने क्या आखिरी मेडिकल किया है?
फिर आप बताएं कि क्यों पहली कानूनी मेडिकल रिपोर्ट में महशीद के प्रेग्नेंट होने की कोई बात नहीं लिखी गई?
मेहरबानी करके इस बारे में और शक ना करें। वो डॉक्टर जिसने कानूनी मेडिकल में आखिरी मेडिकल चेकअप किया है वो जिंदा है। आप चाहते हैं कि पहली रिपोर्ट की कॉपी मंगवा लूं?
हमारी बात यह है कि उनकी पहली रिपोर्ट जिसके बारे में तुम कह रहे हो, तुम्हें एतराज करना चाहिए था उस पर।
अगर महशीद अपने पांव से चलकर यहाँ इस कमरे में ना आई होती तो, और यहाँ जहाँ अमीर हुसैन बैठा है या ना बैठी होती तो, अगर रो पीट कर मुझे खुलकर सारी बातें ना बताई होती तो मैं भी आपकी तरह इस बात पर यकीन नहीं करता। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो घर भी आना नहीं चाहती थी। वाहिद काम जो मैंने किया वो ये था कि उसको समझाया कि कोई अहमकाना काम मत करना, उसने कहा कि नहीं जानती क्या करूं, मुझे भी नहीं मालूम था। मैंने कहा रुको सोचने दो मुझे, जिसके बाद लवासान की चाबी उसको दे दी। कहा कि जाओ लवासान, जोहर तक वहां की ताजा हवा खाओ ताकि तुम्हारी तबीयत में बेहतरी आ जाए। मुझे भी जाना था कि देखो हमारे सर पर क्या मुसीबत आई है। काश काश मेरी जबान काम ना करती और लवासान का काम ना लिया होता। काश मेरे हाथ टूट गए होते तो मैंने चाबी ना दी होती। जानता हूं कि इस हालत में मुझे उस लड़की को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था।
अगर महशीद के पास विला की चाबी थी तो आपने सौरभ चाचा को क्यों फोन किया कि जब तक महशीद ना आए तुम मत जाना?
तुम मुझसे पूछगछ कर रहे हो बेटा?
कोई तुमसे यहाँ पूछगछ करने नहीं आया।
फिर अमीर हुसैन की बात का क्या मतलब है? ये गैर इखलाकी बात है। वो भी किससे? जब मैं आप लोगों के घर का दामाद बना तो इसकी क्या उम्र थी? मैं अगर तुम्हारे बाप की जगह नहीं रखता और तुम्हारे ऊपर हक नहीं रखता तो कम से कम तुम्हारे बड़े भाई का तो हक रखता हूँ या नहीं? उस वक्त तुम मुझसे इस अंदाज में बात करते?
माजरत चाहता हूँ, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। अगर मैं जानना चाहता हूँ कि इस एक सवाल से आप इतना गुस्से में क्यों आ गए हैं? ये एक मामूली सा सवाल है।
इसीलिए कि जाहिरन तुम्हारा सवाल मामूली है। ये एक माह एक साल के बराबर गुजरा है। ये तमाम मुसीबत जो मेरे ऊपर आई किसी और पर आती तो जी कह रहा हूं उसको चाबी मैंने दी, बाद में भूल गया, कहा कि सौरभ चाचा उसके लिए दरवाजा खोले। अब क्या तुम्हारे लिए हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की कसम खाऊं? मुझे क्या मालूम क्या गलती कर दी?
ठीक है मगर कम से कम हमें इतना बताएं कि महशीद का किससे ताल्लुक था।
कैसी बातें कर रहे हो? मुझे कहां से मालूम होगा? जब महशीद यहां आई और अपना मसला मुझे बताया, मुझे इस कदर हैरत हुई कि दो तीन मिनट मेरे मुंह से एक अल्फाज तक ना निकला। मैं और महशीद ने घरेलू बातों और काम की बातों के अलावा किसी और बारे में बात ही नहीं की कभी। मुझे तो ताजुब हो रहा है कि महशीद ने मुझे यह राज क्यों बताया। मैं खुद हैरान हूं। मैंने चाहा कि उसको आराम मिलना चाहिए, उससे कहा हमारे घर जाओ मारूख के पास। उसने पसंद नहीं किया कि मारूख के साथ रहे वो।
क्यों तुमने कहा कि रात भर तुम घर में रहो और सुबह होते ही लवासन चली जाओ?
इसलिए कि कुछ वक्त मिले और कुछ सोच ले। बाद में इसलिए भी ये कहा कि लवासान जाए, यहाँ पर बहुत काम है। अब हर बात पर तो अमल नहीं हो सकता ना, एक आता है एक जाता है। जब से उसने मुझे इस मसले को बताया है मैं तो परेशानी से बिल्कुल मर गया हूँ। एक बात से सब खराब हो जाए, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। क्या आप लोग नहीं जानते कि मैं इन घरेलू मसाइल से कितना परेशान हूँ? हाँ आपकी इज्जत से मेरी इज्जत है। मुझे पसंद नहीं कि आपकी सालों की इज्जत और आबरू एक मिनट में बर्बाद हो जाए। बहरहाल अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं तस्लीम करता हूं, मुझे माफ कर दें, छोड़ दें किसी और वक्त के लिए। उन मसाइल से परेशान हूं जो मैं जानता हूं कि आपको भी परेशान कर रहे हैं। मैंने बगैर किसी डर के इस शहजादे से कहा इस राज को अपने सीने में रखे।
हाँ ठीक है,
मगर ठीक है। बहरहाल अगर आप लोग हकीकत को ढूंढ रहे हैं तो मैं भी हूं। आप चाहते हैं कानूनी मेडिकल के लिए चलें, खड़े हूं साथ चलते हैं। अगर आप समझते हैं कि एक शख्स मैं हूं तो
नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था।
आप मुनासिब समझें तो मुझे भी देख लें कि मैं कहां तक सही हूं। अगर आप अभी भी मुझे अपने बेटे की तरह समझते हैं तो एक बात कहूं, इस नसीहत को अपने बेटे की तरफ से कबूल करें क्योंकि यह बात समंदर की तरह गहरी है। जितना अंदर जाना चाहेंगे तह उतनी ही नीचे मिलेगी।
मुझ में तो कुछ सोचने की ताकत ही नहीं है।
और तुम सोच रहे हो कि मैं पुरसुकून हूं?
खलत इधर उधर की बातें कर रहा और इस कदर भरोसे के साथ बात कर रहा है कि इंसान खामोश हो जाए। आह, मेरा दिल कह रहा है कि ये सब बातें झूठ हैं। मेरी बहन की तस्वीर बिल्कुल पाक है।
ये किसका लड़का था और कहां से किस तरह महशीद की जिंदगी में आ गया?
नहीं अब्बू, महशीद भी उससे नफरत करती थी। जब महशीद डॉक्टर शाकरी के साथ काम करती थी, उस लड़के का बाप एक कानूनी फाइल लेकर आया और महशीद ने उसकी मदद की और उनको फायदा हुआ। उस लड़के ने शादी का तकाजा किया लेकिन कुछ हुआ नहीं था। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कुछ ताल्लुक रहा होगा। हाँ, अगर हक गजाला और अम्मी के साथ हुआ तो फिर?
मैं पसंद करता हूं कि मेरी महशीद उसी तरह पाक और मासूम हो, बिल्कुल उन्हीं दिनों की तरह जब उसकी माँ उसकी दो पूनियां बनाया करती थी। और उस वक्त कब हम चाहते हुए भी किसी भी तरह हासिल नहीं कर सकते।
मैंने डरा दिया क्या?
नहीं, क्या वक्त हुआ है?
11 बजे हैं। मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहती थी।
आप सोई क्यों नहीं?
बेटा मैं क्या करूं, मुझे नींद नहीं आ रही।
गोली खा लें और मुझे किताब दे दें।
मैं नहीं चाहती कि आदत हो जाए।
अरे भाई, थक गया हूँ आज की वजह से। अम्मी।
अमीर
जी,
आज खलत के पास गए थे, क्या हुआ?
कुछ भी नहीं।
मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ क्या?
अरे अम्मी, अब फिर वही बात कर रही हैं।
तो मेरी आंखों में देखो और बोलो कि कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती।
इस तरह तो मुझे अपनी आंखें बंद रखनी होंगी, क्योंकि हर कोई कहता है कि तुम्हारी आंखें इस तरह, तुम्हारी आंखें उस तरह।
जब मैं स्कूल जाती थी तो हमारी उस्ताद उन बच्चों को जो शोर करते थे या गलती करते थे उनको एक लाइन में खड़ा करती थी और एक स्केल हाथ में लेती थी। उसके बाद कहती थी अब बोलो, और उस स्केल से उनके हाथ पे मारती थी। एक दिन मैंने कहा कि क्यों मारती हैं? कहने लगी इसलिए कि ये सच बोलें। मैंने कहा कि इनकी आंखों में देखें, आप समझ जाएंगी कि ये झूठ बोलते हैं या सच।
हाँ अम्मी, हम गए थे खलत के दफ्तर, कुछ हिसाब किताब देखना था और कुछ और चीजें थी, और जो कुछ हिसाब महशीद का बाकी था, बस यही कुछ चंद बातें थी जिसके ऊपर बात करने गए थे।
किसी वक्त सोचती हूँ कि मेरी उस्ताद हक पर थी।
मेडिकल के दफ्तर की रिपोर्ट की छानबीन आपके लिए सादा है जनाब। रिपोर्ट दफ्तर में खराब की गई। वो डॉक्टर जिसने पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनाई उसकी कोई खबर नहीं है। जब भी उसका पूछो कहते हैं छुट्टी पर गया हुआ है।
ये दलील खबर कशी के लिए नहीं है मोहतरमा।
जनाब इंस्पेक्टर साहब, दावा किया जा रहा है कि मेरी बेटी हमला थी और खुदकुशी भी उसने सिर्फ इसी वजह से की है। हमें ये जानना होगा कि ये दावा ठीक है या नहीं।
अच्छा, इस कानूनी मेडिकल की गवाही में तो कहीं भी हमला होने का जिक्र नहीं है जनाब।
इत्तेफाक से यही बात हमारी परेशानी का बाइस है।
अगर ठीक है तो हम जाएं और अपने हाल पे कुछ फिक्र करें, और अगर ये दावा ठीक नहीं है तो हमें अपनी प्यारी बेटी की हैसियत का दावा चाहिए।
मुझे उलझाएं नहीं। गवाही देने वाला कह रहा है कि लड़की ने खुदकुशी की है और कुछ नहीं। किसने ये दावा किया है?
वो पागल नहीं थी जो ऐसे ही खुदकुशी करे? ये फर्ज करना भी महाल है कि उसने खुदकुशी की है। जरूरी है कि इसकी कोई दलील हो।
आप मुझसे ये दलील क्यों पूछ रहे हैं? जाएं और इसकी जिंदगी की छानबीन करें।
उस दफ्तर से असल खराबी करने का गवाह हाजिर हो जाए तो क्या आप कब्र कुशाई और दोबारा मेडिकल पोस्टमार्टम की इजाज़त देंगे?
हाँ शायद।
फिर हमें कोई इख्तिलाफ नहीं।
गहराई जानना चाहते हैं किस लिए?
कातिल, मेरी बहन को कत्ल किया गया है जनाब।
ये बहुत बड़ा दावा है जवान।
देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले से अलग हो तो असल में आपकी नज़र में फाइल में तहकीकात नाकिस है। मैं ठीक कह रही हूँ ना?
जी हाँ।
अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो हम आपसे दो लोगों के बारे में बात करना चाहेंगे।
वो कौन लोग हैं आपकी नज़र में?
महशीद का एक सबका रिश्ता लेकर आने वाला, और फिर जाने क्यों उसी दिन से वो लापता हो गया है।
फिर आप लोगों ने खुद से तहकीकात की है?
आप खुद को मेरी जगह पर रख के सोचें जनाब इंस्पेक्टर। मैं नहीं जानता कि आपकी बेटी भी है या नहीं।
जी
अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, फर्ज करें कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है, ऐसी बेटी जो कल तक खूब ऐशो इशरत आराम से जिंदगी गुजार रही हो अपनी, और उसने अपने मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब भी देखे हुए हों, अपनी जिंदगी से अपने घर वालों से वो बेपनाह मोहब्बत करती है, किस हाल में तुमको धोखा देगी? आपके जहन में क्या आएगा? रंज और मुसीबत से जब आप बाहर आएंगे, क्या ये बड़ा सवाल आपके जहन में नहीं आएगा? कोई भी शक आपके दिल में नहीं आएगा क्या? हम ये नहीं चाहते कि शक के साए में जिंदा रहें। क्या समझने वाली सिर्फ एक बात हो बड़ी, जिससे हमारी निगाहों के सामने खुदकुशी की एक बड़ी वजह सामने आ जाए, या फिर लाजिम है कि हम खुदकुशी पर शक करें?
कह रहे थे कि दो आदमी पर शक है।
इसमें से एक मरहूमा के साथ काम करने वाला जो ठीक एक घंटे पहले इस वाके से वीला लवसान में दाखिल हुआ।
यानी उस जगह जहां मरहूमा दानिश्वर ने खुदकुशी की है?
खुदकुशी नहीं की जनाब, खुदकुशी नहीं की।
वो गवाह जिन्होंने उसको विला में दाखिल होते देखा, वो भी चाहते हैं कि आपकी खिदमत में माजरा बयान करें और अदालत में गवाही के लिए भी तैयार हैं।
ठीक है। मैं कब्र कुशाई का तकाजा करूंगा और जज से भी इजाजत ले लूंगा।
बहुत शुक्रिया जनाब इंस्पेक्टर।
उस मशकूक आदमी का नाम नहीं बताया जो साथ काम करता था।
रॉबर्ट नर्स।
अब ये हमें इतना तंग करेंगे कि हम अपनी ही शिकायत पर पशेमान होंगे।
इत्तेफाक से बरखिलाफ हुआ, हमारी बातों से इंस्पेक्टर पर मुस्बत असर हुआ।
मेरी निगाह में भी ये सब कुछ इतना बुरा नहीं था।
नहीं, मेरा मतलब है कि अगर कब्र कुशाई से हमारी बात साबित हो जाए उसके बाद चाहे कि नूर्स या सईद की शिकायत करें, फिर मसला शुरू हो जाएगा। नूर्स का जब नाम लिया उसका रंग बदल गया अचानक, तुमने देखा? हाँ।
अच्छा, हमें क्या करना चाहिए? ये तो नहीं कर सकते कि खुद आदमियों का पीछा करें, बिलाखिर कानून भी कोई चीज़ है।
अच्छा, फिर किसने मुझे कहा था कि मैं छावनी से भाग जाऊं? तुम ही कह रही थी ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जब मैं आ गया हूँ तो हर चीज कानून पर छोड़ रही हो। मेरे ख्याल से ऐसा ठीक नहीं है कि एक तरफ हम काम करें और एक तरफ कानून।
अगर मैंने कहा है कि ट्रेनिंग पर मत जाओ तो इसलिए कि कुछ दिनों बाद तुमको रोड पर फेंक देंगे, उस वक्त तुम्हारे हाथ में एक डंडा होगा और इधर उधर कर रहे होंगे।
अभी तो कुछ पता ही नहीं,
तुमने खुद देखा था तबरेज में क्या हुआ था।
आखिर तुम नहीं जानती, मैं जानता हूँ, और मेरे ख्याल से जिस बारे में पता ना हो उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए।
मेरी निगाह में ये बहस ज्यादा हो गई है। अभी तो मेडिकल इंचार्ज ने हमारी दरख्वास्त से खबरगुजारी को कबूल किया है, सब्र करें और देखें मराहिल का क्या नतीजा है।
हाँ, मेरा मतलब भी यही था। अभी हमने कबर कुशाई का तकाजा किया है। नूर का मसला बयान करना इस मुलाकात में एक गलती थी।
तुम खुद भी वहाँ मौजूद थे, अगर उसका नाम ना लाते तो शायद वो कबूल ही नहीं करते हमारे तकाजे को। कोई भी चाकू अपने दस्ते को नहीं काटता। कानूनी मेडिकल रिपोर्ट की तब्दीली या अकेला किसी पर इल्जाम लगाना काफी नहीं है। मेरी नज़र में इब्तिदा हमने अच्छी की है।
मैं भी इस मुलाकात से राजी हूँ। फिलहाल इंतजार करें कि जज क्या कहता है। अगर तुम छावनी जाना चाहते हो तो जाओ, मैं और गजाल इस मसले को हल कर लेंगे।
मुझे अब और फौज से कोई काम नहीं है। जब तक इस रिपोर्ट का मामला हल नहीं होता मैं वापस नहीं जाऊंगा।
अख्तर साहबा, वो नमकदान तो दो।
नमक नहीं, अगर आप खाना चाहते हैं तो आपके खाने में डाल दूं।
ये लीजिए, कोई मसला नहीं।
अरे अरे अमीर हुसैन, डॉक्टर साहब को तुम जवाब दोगे? ये टैक्सी वाले की बीवी हैं, कह रही थी कि गोश्त लाएंगी, तो मैंने कहा हमारे पास एक गोश्त खोर है, उसको भी छावनी का गोश्त खाने की आदत है, तो कहने लगे कोई बात नहीं।
अच्छा, मुझे वो नमक तो दो।
अरे
अस्सलाम वालेकुम।
अम्मी घर पर हैं?
जी खाना खा रही हैं।
अस्सलाम वालेकुम।
अरे खलत तुम हो, कैसे सही टाइम पे आए हो, आओ बैठो।
कोई खास बात नहीं है, तुम नाराज मत होना।
मारुख कहाँ है?
मारुख पता नहीं, उसे कहीं जाना था अपने किसी काम से।
अमीर हुसैन एक प्लेट लेकर आओ खलत के लिए।
नहीं नहीं नहीं, नहीं खाऊंगा।
क्यों? अच्छा सलाद तो खाओगे ना।
मुझे घर जाना होगा, मारुख इंतजार कर रही होगी। इस बारे में दफ्तर में हमने बिल्कुल भी बात नहीं की। आप यकीन करें हमारा ऐसा इरादा था ही नहीं कि इस बात को ना छेड़े। इशारा क्यों कर रहे हैं? अम्मी के सामने ना करूं ये बात? क्यों चाहते हैं कि अम्मी को ये बात मालूम ना हो?
तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो?
इतनी अहम नहीं है, बाद में बता दूंगा तुम्हें।
अहम नहीं है? मेरी इस घर में कोई हैसियत ही नहीं है। आप चाहते हैं अदालत जाएं और शिकायत करें, कब्र कुशाई का तकाजा करें, और आप ये चाहते हैं कि पोस्टमार्टम भी किया जाए। मुझे एक फोन भी नहीं किया, फोन कर देते तो क्या हो जाता?
कब्र कुशाई, कब्र कुशाई, तुम लोग किस बारे में बातें कर रहे हो?
सब्र रखो अख्तर, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा।
दिलचस्प, खलत के आदमी हर जगह पर है।
बात तो तुम्हारे फायदे की है, अगर मेरे आदमी हर जगह ना होते तो तुम आधे दिन में जिंदान से कैसे निकलते?
खलत तुम मुझे बताओ कि क्या मसला है? तुम लोग मुझे कुछ नहीं समझते, इसीलिए कुछ नहीं बता रहे।
जनाब इंजीनियर और ये जनाब इंजीनियर दोनों अदालत गए और कब्र कुशाई का तकाजा किया। उसके बाद मेरे साथ काम करने वाले वही रॉबर्ट नूर्स के खिलाफ शिकायत की है। किस जुर्म में? महशीद के कत्ल के जुर्म में।
आए जनाब इंजीनियर, मेरे पीछे आए, बात करनी है आपसे कुछ।
क्या हुआ? कुछ नहीं है, आप पानी पिए।
आखिर होता क्या है, आधे घर वाले आधे घर वालों के खिलाफ हो जाते हैं।
नर्स, ये नर्स आखिर कब से शामिल हो गया हमारे घर वालों में?
आप तो बेहतर जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर नर्स के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं तो उसके पीछे सोचा है कि मुझे क्या जवाब देना होगा? अगर ये काम अमीर हुसैन ने किया होता तो मैं उसकी जवानी की बेवकूफी और खराबी समझता। बाबा, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद ना थी।
पहली बात तो यह है कि अभी शिकायत नहीं की गई। दूसरी बात, ये वाहिद रास्ता है जिससे महशीद को उसकी इज्जत और एहतराम वापस दिला सकते हैं।
इसका मतलब मैं ये समझूं कि मैंने जो कहा आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हुआ?
जानते हो कि मेरा दिल इस बात पे यकीन नहीं करेगा। मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता कि एक आखिरी उम्र में अपनी एक मजलूम बेटी की तस्वीर के सहारे जीऊं।
अगर दोबारा पोस्टमार्टम पहले वाले नताइज दे जो वो देगा जो मुझे लगता है, उस वक्त क्या करेंगे और जो ये तस्वीर बनाई है उसके साथ क्या करेंगे? हाँ
हाँ, देखूंगा उस वक्त की कहां गलती की है। उस बेटी को जिसको पाकदामनी में बड़ा किया, किस तरह आलूदा हो गई वो। मैं बैठकर उस वक्त अपना मुहासबा करूंगा और अपने ऐब और अपनी गलतियों को तलाश करूंगा।
ठीक है,
माफी चाहता हूं।
जनाब अमीर हुसैन भागे हुए सिपाही जिनके पीछे आधे ईरान की फौज लगी हुई है, जाओ जाके उस नादान वकील से कह दो जिसने ये आग लगाई है। मैं उसको जानता हूं, उससे जाके कह दो के जो केस उसने दर्ज करवाया है वो वापस ले ले। एक बहन तो खो चुके हो, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी बहन की जिंदगी भी खराब हो जाए।
मुझे कल से फिलहाल कोई मतलब नहीं है बाबा, अम्मी की तबीयत खराब हो गई है।
नहीं बता रहे, मैं हिम्मत रखती हूँ। उस रात जब खबर आई, जब तुम्हारे बाबा बेहोश हुए, तो मेरी आंख में एक आंसू भी नहीं था। सोचा एक को खो दिया, एक का ख्याल रखूंगी।
ठीक है अम्मी, अब आप खड़ी हो और अपने कमरे में जाओ, थोड़ी देर के लिए आराम कर लें।
मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बच्ची के कमरे में ही रहूं।
और अब तुम ये चाह रही हो कि एक को हम अपने हाथों से गवा दें?
किया तो है, और क्या करूं? क्यों उसका सामान हटा दिया? उसकी तस्वीर क्यों हटा दी? इन दीवारों पे महशीर की तमाम चीजें मौजूद थीं। उसके कागजात को कहां लेकर गए हो?
अभी हमारे लिए महशीर की कहानी लकड़हारे की कहानी की तरह है, आप इससे दूर रहें। अगर बेगुनाह हुई तो उसका एक एक सामान वापस लगा दूंगा, और अगर गुनाहगार हुई उसका सारा सामान जला कर रख दूंगा।
शर्म करो तुम, तुम क्या जानते हो? माँ की मोहब्बत गुनाह और बेगुनाह से कोई ताल्लुक नहीं रखती। माँ बच्चों को बगैर किसी शर्त के प्यार करती है। वो नहीं जानती के उसके भाई के और बाप के दिल में क्या है।
बाप कब्र कुशाही का मुंतजर है। तो खुद मदद करने वाला है।
मरहुमा पर रहमत करे,
खुदा रहम करे। پہلی بار جب مشہد مقدس گئے تھے تمہیں یاد ہے؟ تم ڈر رہے تھے حرم میں آتے ہوئے.
میں؟
تم لوگوں کے ہجوم سے ڈر رہے تھے. میں نے مہشید کو کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا اور حرم کا طواف کیا تھا.
خدایا.
بیٹا امیر حسین.
جی.
قبر کشائی کا نتیجہ جو اور جیسا بھی ہو, مگر دیکھو تم ایسے پیشانہ کہ تمہاری ماں کا دل نہ ٹوٹے بیٹا. ٹھیک ہے بیٹا؟
کس لیے آئی ہیں؟ میرا دل نکالنے کے لیے؟ اصلی کام تو خلط کا ہے. کل رات کو بہت زیادہ بے چین تھا کہ پلک تک نہ جھپکی اس نے اپنی.
نہ تمہارے بابا نہ امیر حسین, کسی کے دل نے نہیں چاہا کہ خلط کو کوئی بھی بات بری لگے.
اچھا, مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی. آپ نے ان لوگوں کو کیوں نہیں سمجھایا؟
با خدا مجھے نہیں معلوم تھا کہ باپ بیٹے دونوں نے مل کر یہ کام کیا ہے. مجھے جب پتہ چلا جب خلط گھر پر آیا.
کم از کم آپ سمجھا تو سکتی تھیں کہ دیر نہ ہو جائے اور وہ شکایت واپس لے لے.
مارو بیٹا, سونا تو سونا ہے, خاک میں ڈال کے کیا کھونا ہے. خلط کوئی معمولی نہیں ہے. تم چھوڑو, بس میری بچی پہ سے تومت پاک ہو جائے.
سوچیں کہ آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ ٹیکسی والے کی شکایت کریں, ٹیکسی والے کا کیا حال ہوگا؟ کیا آپ شکایت کریں گی اس کی؟
بالکل نہیں.
ہاں وہ بھی اسی طرح ہے. ہماری زندگی, پروجیکٹ, خلط کی پارٹنرشپ سب نرس کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ ہر معاملے پر دستخط کرے گا تو یہ پہیا چلے گا, اگر سستی کریں گے تو مذاق ہو جائے گا. بابا صرف آپ کی بات سنتے ہیں. یہاں تک ہو گیا کافی ہے.
تم اپنے باپ کو جانتی ہو, جب وہ ارادہ کرتے ہیں تو کام پورا کرتے ہیں, پھر کسی کی بات نہیں سنتے.
امیر حسین بھی ان کے ساتھ مل کر کسی کو نہیں دیکھ رہا ہے. بیچاری مہشید, کیا ان کاموں سے زندہ ہو جائے گی؟
وہ خود نہیں, اس کا نام.
ہیلو. جی جی, معروف بات کر رہی ہوں. بہناز ہے لندن سے.
الہی میں اس پہ قربان جاؤں.
ہیلو. وعلیکم السلام, کیسی ہو بیٹا؟ فون کیوں نہیں کر رہی تھی؟ بیٹا تمہیں پتہ ہے کہ میں کتنا پریشان ہو گئی تھی. ہاں ہاں میں پریشان تھی. بہناز, مجھے بتاؤ گی کہ یہاں کون ہے؟ نہیں, تمہاری نانی. ہاں ہاں
ہاں ہاں جی جی. اچھا, اس کا جواب تیار ہے, کل آپ کو بھیج دوں گا. کوشش کروں گا کہ کل ظہر کے بعد آپ کو. کوئی بات نہیں, کوئی حکم. مہربانی, خدا حافظ.
کیسے ہیں آپ؟ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو یہاں چیک کیا جاتا ہے.
تھوڑا رکیے. جی یہ رپورٹ مثبت ہے محترمہ. یہ پہلے جج کے پاس جائے گی, یہ کاپی میڈیکل انسپیکٹر کے پاس جائے گی.
مرحومہ کے وکیل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
محترمہ ہمیں یہاں اجازت نہیں, آپ میڈیکل انسپیکٹر سے پوچھ گچھ کریں.
ٹھیک ہے, شکریہ.
تم چاہتی ہو کہ مجھے ادارے سے بےعزت کر کے نکال دیا جائے؟
نہیں.
جو تم کر رہی ہو اس کا مطلب یہی ہے.
اچھا میں تم سے کیا مانگ رہی ہوں؟ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ حاصل کرنا اتنا مشکل کام ہے؟
مشکل نہیں ہے پر خطرناک ہے.
اگر تم چاہو تو کر سکتے ہو.
وعدہ نہیں کرتا.
ٹھیک ہے, میں رات کو کلینک آتی ہوں.
अगर कुछ हो गया तो मैं खुद तुमको फोन करूंगा।
अगर फोन करना हो तो कर लेना, मगर मैं आऊंगी। चलो अमीर हुसैन।
कहाँ डॉक्टर साहब, अगर हो सकता है तो कुछ करें, क्योंकि मुमकिन है कि एक बार दोबारा वो उसको बदल दे।
चलो।
ये तुम्हारा दोस्त बहुत दिल और जिगर वाला है।
कहाँ जा रहे हैं?
क्या करें? इधर आ जाएं। ये काम बहुत खतरनाक है।
वही बकवास जो सियासी कैद में भी हो रहा है।
हुसैन खामोश हो जाओ,
हमें कोई नहीं सुन रहा है।
किसी की नजर में ना आए, अकल का तकाजा एहतियात है।
मेरी आंखों में इन बातों से आंसू नहीं आते।
इस तरह की बातों से हमारी खातिर एहतियात करो।
क्यों?
एक जमाने में ये रिश्ता लाया था।
आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। रोल नंबर फला तारीख फला जज मोहतरम तेरान मरहुमा महशी दानिश्वर के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का नतीजा क्या इस तरह है। आपके खिदमत में अर्ज है कि मरहुमा मरने के वक्त कमारी थी। इसी तरह तजर्बा टेक्नोलॉजी से ये भी मालूम हुआ है कि मौत दम घुटने की वजह से हुई है। पहले दम घुट कर मारा है, फिर फांसी पर लटकाया है। इसी वजह से नरखरे और गले की तमाम हड्डियां सलामत हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब फांसी लेते हैं तो गले और हलक की तमाम हड्डियां टूट जाती हैं और फिर इस तरह मौत वाकया हो जाती है। और अब दस्तखत मुहर और फना फला।
देख सकती हूँ? अच्छा, ये हमारे पास रहे तो बेहतर है, कहीं मेडिकल इंस्पेक्टर को देते हुए कॉपी तब्दील ना हो जाए।
मेरी जिंदगी के साथ मत खेलो, वो समझ जाएंगे कि मैंने तुम्हारे लिए निकाली है।
किसी को पता नहीं चलेगा।
तुम नहीं जानती, समझ जाएंगे।
डॉक्टर एक दफा तो अपनी जिंदगी से मत डरो,